नमस्कार, मैं रवीश कुमार। केरला के वायनाड की आपदा केवल केरला की खबर नहीं है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी खबर है, जहां भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और उन राज्यों के लिए भी जहां से मजदूर केरला काम करने गए हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड से भी लोग यहाँ कमाने के लिए आए हैं। 2019 के अगस्त में वायनाड के ही पुथुमला में पहाड़ धंसने की एक घटना हुई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और 5 लोगों का कभी पता नहीं चला। वह घटना भी मौजूदा घटना के पास के इलाके में हुई थी। इस लैंडस्लाइड में उन बस्तियों में मकान की 2 कतारें धंस गईं या लापता हो गईं, जहां दूसरे राज्यों से आए मजदूर रहा करते थे। मरने वालों की आधिकारिक संख्या इस लैंडस्लाइड में 300 से अधिक हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या 360 तक पहुंच गई है और भी बढ़ सकती है, क्योंकि करीब 200 लोग लापता हैं। शवों की शिनाख्त मुश्किल हो गई है। अब तक बरामद हुए शवों में से एक वैशाली बिहार की मजदूर पूजा कुमारी देवी की पहचान हुई है। साधु पासवान, रणजीत कुमार और बिजनेश पासवान अभी तक लापता हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि चुरलमला, अटमला, मुंडकई गांव में बड़े बड़े बागान हैं, जहां पर बिहार यूपी से आने वाले मजदूर काम करते हैं। केरला के श्रम विभाग ने बताया है कि 380 ऐसे मजदूर और उनके परिवार राहत शिविरों में रह रहे हैं, जो इससे प्रभावित हुए हैं। ड्रोन कैमरे की मदद से आप देख सकते हैं कि वायनाड की पहाड़ी के ऊपर इलायची, काली मिर्च और चाय के बागान कितने सुव्यवस्थित और सुंदर लग रहे हैं। यहाँ के स्थानीय मुसलमान खाड़ी के देशों में काम करने गए और ईसाई यूरोप के देशों में। इस वजह से इन गांवों के मकानों से समृद्धि झलकती है, लेकिन सच्चाई कुछ और भी है। इन बागानों में मजदूरी कर जीने वाले ज्यादा लोग हैं। इनमें मुसलमान भी हैं, ईसाई और हिंदू भी, और दूसरे राज्यों से आए मजदूर भी। 2 अगस्त की द हिंदू में रिपोर्ट है कि यह खतरा है कि पलायन मजदूरों की गिनती न हो सके। स्थानीय भाषा में पलायन मजदूरों की बस्तियों को पाड़ी कहा जाता है, जो बाढ़ में बह गईं। वायनाड के बागानों में अधिकतर झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मजदूर काम करते हैं, पश्चिम बंगाल और बिहार के भी। इसलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने सांसदों को 2 दिनों के लिए वायनाड का दौरा करने का आदेश दिया था। केरला में एक संस्था है, सेंटर फॉर माइग्रेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसके कार्यकारी निदेशक बिनॉय पीटर का द हिंदू में बयान छपा है कि इन मजदूरों से ही पता चलेगा कि जहां भूस्खलन हुआ वहां और कितने मजदूर काम कर रहे थे या रह रहे थे, क्योंकि हो सकता है इनका उन लोगों से संपर्क हो। तो कितने लापता हैं और कितनों की मौत हुई है, इसके लिए इन मजदूरों का अभी वहां होना बहुत जरूरी है। इससे पलायन मजदूरों की क्या हालत है, किस तरह से अनियमित प्रणाली में वे काम करते हैं, यह भी पता चलता है। उनके विषय में सूचना दूसरे मजदूर ही हैं। वायनाड में करीब 200 लोग लापता हैं। आपदा के 5वें दिन बाद भी लोगों को उम्मीद है कि कुछ अच्छी खबर आ जाएगी या चमत्कार हो जाएगा। कोई अपने बच्चे को खोज रहा है तो कोई बच्चा अपने माँ बाप को। मरने वालों की आधिकारिक संख्या 300 से अधिक है। लापता लोगों के बारे में धीरे धीरे उम्मीदें कम होती जा रही हैं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है बचाव कार्य तकरीबन पूरा हो चुका है। जिन शवों की पहचान नहीं हो पाई या केवल शरीर का ही अवशेष मिला, सरकार ने उन सभी को दफनाने का फैसला किया है। 4 अगस्त को सभी शवों को दफनाया गया। इनमें किसी का हाथ है तो केवल पांव है या शरीर का कोई एक हिस्सा। इन सभी को एक नंबर दिया गया है। पंचायत या नगर पालिका के अधिकारियों की मौजूदगी में दफनाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, ताकि प्रशासन के पास सबका रिकॉर्ड रहे। ऐसी सामूहिक खबरों पर दफन के दौरान ही सर्वधर्म प्रार्थना सभा होती है। यहां से कांग्रेस के विधायक टी सिद्दीकी का कहना है कि मरने वालों और गुमशुदा लोगों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक हो सकती है। जिन लोगों ने अपना पूरा परिवार खो दिया, उनके लिए इस आपदा के सदमे से उबरना जीवन भर के लिए मुश्किल होगा। जिंदगी बसा लेने की बात तो दूर, रातों की नींद उड़ जाएगी और हर बारिश उन्हें परेशान करेगी। हम अक्सर इनके पुनर्वास की बात करते हैं, लेकिन ऐसे हालात के शिकार लोगों के मानसिक सदमे का ध्यान नहीं रहता। मानसिक स्तर पर उन्हें लंबे समय तक मदद की जरूरत होती है। केरला सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस त्रासदी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए 160 काउंसलर नियुक्त किए हैं, जो कैंप और घरों में लोगों से संपर्क करेंगे। सरकार ने मनोचिकित्सक सहायता देने के लिए पूरे साल का प्लान बनाया है। जिन परिवारों में केवल महिलाएं बच गई हैं, उनका संघर्ष अलग हो जाता है। इन सभी के लिए बारिश और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज का मतलब हमेशा के लिए बदल चुका है। अपने ही घरों को इस हाल में देखना आसान नहीं। यहां से दूर बसा देने के बाद भी ये लोग इस आपदा की भयानक स्मृतियों से कभी दूर नहीं जा सकेंगे। जब हमारा आपका ध्यान हमेशा के लिए वायनाड से हट जाएगा, तब इनका संघर्ष अकेले का हो जाएगा। जैसे अब तो कोई बात नहीं करता, 2018 में केरला की बाढ़ में मारे गए लोगों के परिवारों का क्या हुआ? इन लोगों के भीतर बाढ़ और लैंडस्लाइड दिन रात घटती रहेगी। बहनें, बहनों के पति, घर के अन्य बड़े और उनके परिवार, सबकी मौत हो चुकी है। न्यूज मिनट में शराफुद्दीन का बयान छपा है कि शुरू में हम विलाप कर रहे थे, मगर अब हम सब सुन्न हो गए हैं। केरला के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वायनाड की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। भारत में हाल के समय में वायनाड जैसी लैंडस्लाइड की घटना नहीं हुई। इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। राज्य सरकार की राहत शिविरों में 1000 से ज्यादा विस्थापित रह रहे हैं और वायनाड में 3000। ड्रोन कैमरे से आप जो नदी बहती देख रहे हैं, वो चालियार नदी की सहायक नदी है, जिसका नाम इरुवाजिनगी है। इसी नदी के किनारे चुरलमला, अट्टामला, मुंडकई गांव बसे हैं। इरुवाजिनगी की धारा आम तौर पर काफी पतली थी, सामान्य थी, इसका प्रवाह काफी धीमा था। यह नदी यहां से 25 किलोमीटर दूर चालियार नदी में जाकर मिलती है। आपदा की रात तेज बारिश से इस नदी का पानी भी बढ़ गया और फैल गया। पहाड़ के धंसने से चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े नीचे आ गिरे और किनारे बसे मकानों को जमींदोज कर दिया। सब कुछ इतना कम समय में हुआ कि शांत सी बहने वाली इरुवाजिनगी नदी की धारा में भी प्रलय का प्रवाह पैदा हो गया। इस नदी की धारा शवों को बहाकर 25 किलोमीटर दूर बहने वाली चालियार नदी तक ले गई। मुंडकई चुरलमला में नदी के किनारे किनारे घर और इमारतें खड़ी थी। 3 गांवों के मकानों और अन्य सामानों का मलबा 8-8 किलोमीटर दूर तक बह गया। 169 किलोमीटर लंबी चालियार नदी केरला के 3 जिलों मलापुरम, कोईकोड और वायनाड के लिए जीवनदायी मानी जाती है। अब वही उनके सबसे बड़े शोक का प्रतीक बन गई है। नदी से मिलने वाले शवों और शवों के अवशेषों की कुल संख्या 300 से ऊपर चली गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल सी मुरलीधरन ने द हिंदू से कहा है कि यह भूस्खलन डैम के फटने जैसा था। उनके अनुभव में पहली बार इस कदर भीषण भूस्खलन हुआ कि जिसमें घाटी में 6 से 7 किलोमीटर दूर तक मलबा फैल गया। आमतौर पर मलबा 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैलता है। वायनाड की घटना में मिट्टी पानी से अत्यधिक रूप से तर थी और भारी बारिश के बाद डैम फटने की शक्ति से ब्लास्ट होती हुई चालियार नदी में मिल गई और गांवों को घाटी में बहा ले गई। गाडगिल पैनल ने चुरलमला को पर्यावरण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक संवेदनशील इलाके की जोन में डाला था। इसके 2 कारण थे। एक तो यह कि यहां पर काफी ज्यादा बारिश होती है, जो जलवायु परिवर्तन के चलते और ज्यादा हो गई है, और दूसरा पर्यटन और हाईवे रोड के विस्तार के नाम पर यहां बेलगाम विकास कार्य चल रहे हैं। अल जजीरा में TA अमीरुद्दीन ने अपनी रिपोर्ट में विजू बी का एक बयान छापा है। विजू बी ने फ्लड एंड फ्यूरी इकोलॉजिकल डेवेस्टेशन इन द वेस्टर्न घाट्स नाम से किताब लिखी है। विजू बी का कहना है कि राज्य सरकार वायनाड की प्राकृतिक चुनौतियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। जिस जगह भूस्खलन हुआ है, उसी के पास से गुजरने वाले 2000 करोड़ रुपए के एक मेगा टनल प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने वहां पर टनल प्रोजेक्ट को मंजूरी क्यों दी, जब सभी को पता है कि पश्चिमी घाट कमजोर इलाका है, यहां लैंडस्लाइड की घटनाएं होती रहती हैं। कई तरह के मीडिया रिपोर्ट को पढ़ते हुए आपको अलग अलग कारण पता चलते हैं। हमारे इस वीडियो का फायदा यह है कि आप कई सारी रिपोर्ट के जरूरी हिस्सों के बारे में एक जगह पर जान पाते हैं। इतनी रिपोर्ट पढ़ने का मौका शायद आपको ना मिले, तो कम से कम इस एक वीडियो से आप काफी कुछ जान सकें, वह भी हिंदी में। यही हमारा मकसद है, इसलिए लंबे वीडियो देखा कीजिए। न्यूज मिनट की पत्रकार मारिया टेरेसा राजू ने नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज NCESS की रिसोर्स एनालिसिस डिवीजन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के सोमन से बात की है। डॉक्टर के सोमन ने कहा है कि अंग्रेजों ने वायनाड में चाय के बाग बनाते समय यहां बहने वाले छोटे छोटे नालों को भर दिया। इन नालों से पानी को निकासी का रास्ता मिल जाया करता था। साथ ही उन्होंने नदी के किनारे मजदूरों की रिहाइश शुरू कर दी, जहां बाद में छोटे शहर बन गए। इन रास्तों पर कभी नदी बहा करती थी, कम पानी या पहले के हुए भूस्खलन के बाद नदी ने यह रास्ता कुछ समय के लिए छोड़ दिया होगा, मगर 30 जुलाई की रात को नदी ने अपना रास्ता वापस लिया और हजारों लोग उसकी जद में आ गए। डॉक्टर के सोमन कहते हैं कि इस इलाके में 1984 और 2020 में कम तीव्रता की भूस्खलन की घटनाएं हो चुकी थी। उनका कहना है कि जो पत्थर आए हैं और जो पत्थर पानी के रास्ता बदलने के बाद दिखाई देने लगे हैं, वे एंगुलर हैं, नुकीले हैं, तीखे हैं। इसका मतलब है ये पत्थर यहाँ पूर्व में हुए भूस्खलन से आए होंगे, यानी इस इलाके में भूस्खलन का इतिहास होते हुए भी यहाँ लोग बसते चले गए और उन्हें बसने भी दिया गया। पानी को शताब्दियों तक अपना रास्ता याद रहता है। कुदरत को चकमा देकर एक नदी के रास्ते पर कब्जा कर लेना खतरनाक होता है। वायनाड की आपदा पर भी आधे अधूरे तरीके से बात हो रही है। इतनी बड़ी आपदा हमारे सामने घटी है, केंद्र और राज्य की राजनीति के बीच एक और भूस्खलन को भुला दिया गया जिसमें 8 लोगों की जान गई है। कर्नाटका के शिरूर की यह घटना बता रही है कि बेतहाशा सड़क निर्माण ने भी भूस्खलन को बढ़ाया है। यह अपने आप में चेतावनी है, लेकिन तब क्या कोई सुनता है कि पश्चिमी घाट के इलाकों में सड़कों के विस्तार के लिए टेक्नोलॉजी का सख्त मानक होना चाहिए, इलाके का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। 17 जुलाई की सुबह कर्नाटका के हासन क्षेत्र में भी भूस्खलन हुआ, जिसकी चर्चा कम हुई। शिरूर की लैंडस्लाइड पर कम बात क्यों हो रही है? यह इलाका महाराष्ट्र के अकोला से लगा हुआ है। 2 सप्ताह से यहां पर तलाशी का काम चल रहा है। भूस्खलन इतना तीव्र था कि चाय की दुकान पर बैठे ट्रक चालक को भागने का मौका भी नहीं मिला। चाय की दुकान और 2 ट्रक बह गए। अभी तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं और 3 और शवों की तलाश जारी है। हासन जिले के शिरूर गांव के ऊपर मिट्टी और मलबे का बबड़ा ढेर आ गया। अकोला में 4 घर और 2 हाई टेंशन बिजली ट्रांसमिशन टावर नष्ट हो गए। यह गांव उस राजमार्ग पर है जो महाराष्ट्र के पनवेल को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ रहा है। इस लैंडस्लाइड से 1640 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का कारवार मंगलुरु हिस्सा नष्ट हो गया। 2 लेन वाले इस खूबसूरत राजमार्ग के एक तरफ पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं और दूसरी तरफ गंगावली नदी है। 3 अगस्त को कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शिरडी घाट का दौरा करने गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने पश्चिमी घाट के क्षेत्र में सड़क बनाते समय वैज्ञानिक कारणों का ध्यान नहीं रखा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि पहाड़ों को 45 डिग्री के कोण पर काटा जाना चाहिए, न कि 90 डिग्री के कोण पर। पहाड़ों को कम डिग्री पर भी काटा जा सकता है ताकि लैंडस्लाइड के खतरे को कम किया जा सके। शिरडी घाट एरिया में भी जुलाई महीने से लगातार बारिश हो रही है। 30 जुलाई को कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और लोग भी घायल हुए हैं। इस घटना के संदर्भ में कहा जा रहा है कि केवल भारी बारिश के कारण ही भूस्खलन नहीं हो रहा, जिस तरह से पहाड़ काटे जा रहे हैं वह भी एक बड़ा कारण है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका के 15% से भी अधिक क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा है, 29,300 वर्ग किलोमीटर के बराबर। सवाल है कि क्या सरकार अपना काम रोक सकती है? बहस हो रही है कि वायनाड में आबादी को इसलिए नहीं हटाया जा रहा क्योंकि वह वोट बैंक का हिस्सा है, लेकिन इस सवाल में भी पहाड़ों को बचाने की चिंता नहीं है, राजनीति है केवल। इसी पश्चिमी घाट में राजमार्ग बनाने के लिए पहाड़ों को कितनी बेदर्दी से काटा जा रहा है किसी को परवाह नहीं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने एनएचएआई और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट दी है। इसमें कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस इलाके में अवैज्ञानिक तरीके से पहाड़ों को काटा है। ढलान बदले जाने से पानी के निकलने का रास्ता प्रभावित हुआ और तीखा हुआ। पहले ढलान होती थी, लेकिन पहाड़ के काटने के बाद ढलान अब गायब और पहाड़ सीधा खड़ा नजर आता है। जब भी तेज बारिश होती है, पहाड़ का हिस्सा ऊंचाई से गिरता है और तेजी से धंसने लग जाता है। भारी बारिश के कारण इसकी भूस्खलन और मलबे के नीचे आने की गति और बढ़ जाती है, मात्रा भी ज्यादा हो जाती है। ऐसी कोई एजेंसी अब सपना ही है जो फैसला करते समय पर्यावरण का ध्यान रखे और प्रकृति के बारे में सोचे। आपको एक किस्सा बताता हूं। 2020 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की, उसके ठीक दूसरे दिन सरकार का पर्यावरण मंत्रालय एक अधिसूचना जारी करता है। किस काम के लिए? इसके जरिए कुछ खास तरह के प्रोजेक्ट को चालू करने से पहले पर्यावरण के हिसाब से मंजूरी की बाध्यता समाप्त कर दी जाती है। कब? जब आप कोरोना की दहशत में घिरे हुए थे और सरकार क्या कर रही थी कि कुछ प्रोजेक्ट को पर्यावरण की मंजूरी की बाध्यता से अलग कर रही थी। कितना जरूरी काम करती है सरकार आपके लिए। यूपीए सरकार के दौर में 2006 में पर्यावरण मंत्रालय ने एक सूची बनाई कि इन इन कार्यों से पहले पर्यावरणीय मंजूरी लेनी पड़ेगी। लॉकडाउन के दूसरे दिन ऐसी अधिसूचना की जरूरत क्यों थी? तब तो सारा काम ठप हो गया था, काम भी नहीं हो रहा था। जाहिर है इसके लिए लंबे समय से मौका खोजा जा रहा होगा और लॉकडाउन ने वो मौका दे दिया। सरकार के इस फैसले को पहले एनजीटी में चुनौती दी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार से कहा, 3 महीने के भीतर अपने फैसले पर विचार कीजिए, आपका फैसला असंवैधानिक है। मगर सरकार ने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने मार्च 2024 में फैसला सुनाया। उससे पता चलता है कि सरकार पर्यावरण को लेकर कितनी संवेदनशील है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सबसे पहले लॉकडाउन के समय जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया, फिर कहा सरकार ने मनमाने तरीके से यह काम किया है और उसका आदेश असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि सड़क और पाइपलाइन बिछाने के लिए नियमों में छूट क्यों दी गई, सुरक्षा मानकों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। हम ये बात समझने में असमर्थ हैं कि केंद्र सरकार ने इतनी जल्दबाजी दिखाते हुए ऐसी अधिसूचना क्यों जारी की। केवल भारी बारिश को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, वह भी एक कारण है, लेकिन सड़कों और विकास की परियोजनाओं के प्रोजेक्ट को कैसे मंजूरी दी जाती है इसे भी देख लीजिए। कितनी जल्दी है कि पर्यावरण के नाम पर मंजूरी के नियमों को बदलने की, इसे झंझट बताया जाता है, देरी बताते हैं। ऐसा क्यों है? इसका मतलब है जब तक यह जनता का मुद्दा नहीं बनेगा, जनता गंभीरता से इन कारणों को नहीं जानेगी, जनता ही आपदा में मारी जाती रहेगी। वायनाड के साथ साथ इसी समय कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को भी एक साथ देखिए। पता चलेगा कि इस तबाही में विकास की नीतियों का कितना हाथ है और प्रकृति के प्रकोप का कितना। वायनाड कलपेट्टा विधानसभा में आता है। यहाँ के विधायक टी सिद्दीक ने कहा है कि मुंडकई का इलाका अब इंसानों के रहने लायक नहीं रहा। वहां जिस स्तर की तबाही फैली है, उसके बाद वहां फिर से बसावट करना खतरनाक होगा। कलाड़ी का इलाका उनमें से है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, मगर अब यहाँ की जमीन इतना ज्यादा पानी झेल नहीं पा रही, जिस कारण भूस्खलन जैसी घटनाएं हो रही हैं। और बात सिर्फ जान के नुकसान की नहीं है, जो लोग बच गए उनके पास अब वापस जाने के लिए जो रह गया है वो कितना बदल चुका होगा। घर नहीं रहे, जमीन नहीं रही, ना ही जमीन में इतनी पकड़ रही कि फिर से घर टिका सकें। वायनाड में 500 एकड़ से अधिक की फसल तबाह हो गई है, 3700 एकड़ खेतियर जमीन प्रभावित हुई है। एरियल फुटेज को देखकर थोड़ा सा अंदाजा मिलता होगा कि भूस्खलन का क्या वेग रहा होगा, कितनी ऊर्जा से पत्थर और पानी नीचे आए होंगे। देखकर ऐसा लगता है पानी और मिट्टी चट्टान ने मिलकर जमीन ही तोड़ दी। इतने सारे खड्डे, बड़े बड़े पत्थर और नदी के चैनल देखकर लगता है मानो किसी ने जमीन तोड़कर जगह बनाई। कितनी तबाही मची होगी उसका अंदाजा इस वीडियो से मिलता है। यहां करीने से काटे हुए खेत के ठीक बगल में पूरी तरह से तबाह हो चुकी जमीन है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुट्ठी भर जमीन निकालकर बाहर फेंक दी हो। ऐसी तबाही है कि अप्राकृतिक लगती है, मगर है प्राकृतिक ही, मानवीय ही। इसी देश में 65,000 से अधिक मणिपुरी लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। अपने ही देश में बिना किसी प्राकृतिक आपदा के 15 महीनों से इन शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। क्या उनके लिए कोई नया राज्य बसा देंगे? तो समस्या का समाधान तो करना ही होगा। 2019 में भी वायनाड में एक भूस्खलन की घटना हुई जिसमें 83 परिवार बेघर हो गए। तब भी इन लोगों को दूसरे इलाके में जमीन खरीदने, मकान बनाने के लिए राज्य सरकार ने 10 लाख की राशि देने की बात की। सवाल है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में और इतने कम पैसे में दूसरी जगह पर घर बनाए जा सकते हैं जमीन खरीदकर? पूरी एक टाउनशिप बसानी होगी। जाहिर है आसान काम नहीं और लंबा वक्त तो लगता ही होगा। राज्य सरकार वायनाड आपदा के प्रभाव में आए लोगों को दूसरी जगह पर बसाने के लिए विचार कर रही है। मांग कर रही है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित हो ताकि केंद्र से अधिक मदद मिले। राज्य सरकार ने कहा है कि मुख्यमंत्री आपदा कोष में आप पैसा दीजिए, जो भी पैसा आएगा उसके एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा और CAG से इसकी ऑडिट कराई जाएगी। आपदाओं को हम अलग अलग नहीं समझ सकते, ना तो इस तरह से देख सकते हैं कि यह केवल केरला की घटना है और यह घटना केवल हिमाचल प्रदेश की। आजीवन हिमालय की बनावट और बसावट पर काम करने वाले पर्यावरणविद शेखर पाठक की इन किताबों को कभी पलट कर देखिएगा। हिंदी में ही है और वाणी प्रकाशन से छपी है। 2018 में जब केरला में बाढ़ आई तब शेखर पाठक ने EPW में एक लेख लिखा, बताया कि 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़, 2014 में कश्मीर में आई भारी बाढ़ और केरला की बाढ़ में कई समानताएं देखी जा सकती हैं। दोनों ही क्षेत्रों की पारिस्थितिकी बेहद कमजोर है। तब शेखर पाठक ने लिखा था कि केंद्र की एजेंसियों को समग्रता से देखने की जरूरत है। बात यह है कि विशेषज्ञ तो अपना काम कब का कर चुके हैं, उनकी हर चेतावनी सही साबित हो रही है और सरकार का हर दावा गलत साबित हो रहा है। आखिर सरकार और उसकी एजेंसियां कब इन विशेषज्ञों की बातों की तरफ झुकेंगी देखेंगी? उन्होंने अपनी मनमानी की, जितनी करनी थी उससे ज्यादा की। उनके बनाए रास्तों पर आज पहाड़ भरभरा कर गिर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तबाही अब वार्षिक हो चली है। साल दो साल का भी अंतर नहीं होता। भारी बारिश, सड़कों का चौड़ीकरण, राजमार्गों का विस्तार, अनेक कारण हैं जिनसे हमारे पहाड़ घिसते जा रहे हैं। हम सभी मिलकर तबाही का इंतजार कर रहे हैं। याद रखिएगा, भूस्खलन वाली सुबह नदी में बाढ़ भी आई थी। आजकल हमने बाढ़ की चेतावनी के सिस्टम विकसित कर लिए हैं, लेकिन शेखर पाठक लिखते हैं बाढ़ अपने आप में एक चेतावनी का प्राकृतिक सिस्टम है। बाढ़ के रूप में प्रकृति ने इंसान को चेतावनी दी है कि अपनी बस्तियां और शहर नदियों के रास्ते में या उनसे सटे मैदानों में मत बनाओ। फिर भी हम बनाए जा रहे हैं। यह वीडियो देखकर आप कह सकते हैं कि वायनाड कितना सुंदर है भी। स्थानीय लोग इसकी तुलना कश्मीर से करते हैं। अगर आपको केवल इसकी सुंदरता ही दिखाते रहें तो पता भी नहीं चलेगा कि विकराल त्रासदी यहीं से गुजरी है। प्रकृति धर्म और जाति नहीं देखती, ना वो किसी से बदला ले रही है, वो बस अपनी प्रणाली और अपने नियमों का अनुसरण करती है। शेखर पाठक ने हम सभी के प्रकृति के साथ संबंधों को समझाया है। इस तबाही को देखते हुए उनकी बात का जिक्र जरूरी है कि जो लोग इन इलाकों में रहते आए हैं वे प्रकृति को लेकर ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जैसे हिमालय के समुदायों में भूस्खलन, ग्लेशियल झील के फटने और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक प्रणालियों की स्वाभाविक समझ देखी जाती है। वहीं दूसरी तरफ मनुष्य अतिक्रमणकारी भी होता है, उनमें उन्हीं नियमों की अवहेलना करने की प्रवृत्ति होती है। हर तरह के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य करते चले जाते हैं। भूस्खलन और बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए हमें ऐसी सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक एजेंसियां चाहिए जो चिरपरिचित और उचित पारंपरिक तरीकों का पालन कर सकें और प्राकृतिक आपदाओं के परिणामों को कम करने के लिए देश के भूमि और जल संसाधनों को नियंत्रित करने वाले कानून लागू कर सकें। आप भी जानते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। वायनाड से भी हम कुछ भी नहीं सीखने वाले। केदारनाथ की त्रासदी से हमने क्या सीख लिया? इतनी बड़ी आपदा हो गई वायनाड में, प्रधानमंत्री मोदी वहां नहीं गए। आपदा प्रबंधन का कार्य गृह मंत्रालय के तहत आता है, गृह मंत्री भी नहीं गए। उम्मीद है बाद में कभी जाएंगे और अपने विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। लेकिन उत्तराखंड में ही प्राकृतिक आपदा कितनी नियमित हो चली है, क्या उसी को लेकर कोई ठोस समीक्षा हो रही है? कभी आपने सुना कि सरकार ने अपना प्रोजेक्ट रोक दिया? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सरकार एक ऐसी प्रणाली क्यों है जिसे अपनी गलती का कभी एहसास ही नहीं होता। प्राकृतिक आपदा भी दूर का शब्द है, लगने लगा है। ऐसा लगता है कि इस आपदा में प्रकृति ही शिकार हुई है और प्रकृति ही कारण है। इंसान तो बस बैठकर वीडियो देख रहा है और राजनीति कर रहा है कि वायनाड में मुसलमान रहते थे और उत्तराखंड में हिंदू। आपदाएं धर्म के आधार पर नहीं आती हैं। निकालिए पर्स और लिख के रखिए मेरी बात। मूर्खता धर्म के आधार पर जरूर आती है या अपने आप में किसी भी आपदा से भयंकर है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।